તારીખ 6/3/1993 જ્ઞાનના વિષય ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું સોનાગીરીમાં પ્રવચન. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन करना है आचार्य महाराज को, जिसकी भावना के लिए ग्रंथ रचना होनी है. इस आत्मभावना को भाने के लिए ज्ञान के भेद कह रहे हैं. उसमें केवल ज्ञान का स्वरूप था. सुबह जो बात चली है संक्षेप में उसका फिर से बात ले लें कि केवल ज्ञान कैसा है. एक उपाधि रहित स्वभाव वाला है. उपाधि मैंने बोझा, यहां उपाधि मैंने बोझा. और किस गाथा में उसको सौ उपाधि कहा, मैंने उपाधि सहित कहा, वहां यही अर्थ नहीं है. वहां ऐसी अपेक्षा नहीं है. वहां कर्म के क्षय की अपेक्षा क्षायिक ज्ञान को लगती है. जो पहले बंधा हुआ है उसको मुक्त कहना ये उपाधि है. लेकिन मुक्त होना वो उपाधि नहीं. कहना अलग बात है और होना अलग बात है. नए कथन के भी होते हैं जिसको शब्द नहीं कहते हैं, और नए वास्तव में ज्ञान की पर्याय है, उसको ज्ञान नए कहते हैं. कभी कथन में से बात चलती है, कभी ज्ञान में से बात चलती है. तो वहां क्षायिक कर्म क्षय की अपेक्षा लगी, इसके लिए इसको अपेक्षा को उपाधि कही है. और यहां रागादि किसी भी प्रकार की उपाधि उसमें नहीं है, यही कहने का अभिप्राय है. दोनों बात कह सकते हैं इसके भाव को समझ में लेकर के, तो उसमें कोई दोष नहीं. कथन में दोष नहीं होता. दोष तो जो असमझ है, विपरीत समझ है, उसमें होता. समझ पूर्वक कहने में तो कोई बाधा नहीं. एक तो ये कहा कि ये उपाधि रहित होता है, सर्वथा निरुपाधिक होता है. राग आदि विभाव की कोई उपाधि केवल ज्ञान में नहीं होती, और अनंत पर पदार्थ में होते हुए भी किसी ज्ञेय की उपाधि केवल ज्ञान को नहीं आती. इसलिए ये बात स्पष्ट करना उचित है कि कहीं लोग ऐसे मानते हैं कि पर द्रव्य को जानना वही उपाधि है. पर द्रव्य को जानना वही उपाधि नहीं है. ये तो स्वभाव है कि ज्ञान का निर्मलत्व है, स्वच्छत्व है. इसी कारण से उसमें लोकालोक प्रतिबिंबित हो जाते हैं. दूसरा ये कहा तो वो क्रम रहित होता है, जानने में क्रम नहीं पड़ता. एक साथ स्व और सभी पर को एक साथ जान लेता है, उसमें क्रम नहीं पड़ता. एक पीछे एक जाने, पहले उसको जाने, बाद में उसको जाने, ऐसा केवल ज्ञान में नहीं होता. या भूतकाल को पहले जाने, पीछे वर्तमान को जाने, पीछे भविष्य काल को जाने, ऐसा भी नहीं होता. एक साथ तीनों काल के सभी पर्यायों समेत सभी पदार्थ को जानने का अक्रम रूप से होता है, ऐसा एक केवल ज्ञान का सामर्थ्य बताया। इंद्रियों की जानने के काल में अपेक्षा नहीं है, केवल परमात्मा को देह का संयोग होने के बावजूद भी तो आंख से देखते नहीं, कान से सुनते नहीं, या किसी भी प्रकार के ज्ञान में किसी इंद्रियों का निमित्त नहीं पड़ता, माध्यम नहीं होता, मन का भी नहीं, सर्वथा परिपूर्ण अतीन्द्रिय उपयोग होता है केवल ज्ञान में, किंचित मात्र भी इंद्रियों से उसका जुड़ान या झुकाव भी नहीं होता, और व्यवधान रहित है, जानने में केवल ज्ञान को कोई बाधा नहीं करता। किसी भी पदार्थ बीच में आ जाए या किसी क्षेत्र और काल में नहीं जानने का कोई कारण बन जाए, ऐसा केवल ज्ञान में नहीं है। और प्रत्येक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, यानी समस्त क्रम से एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, अक्रम रूप से सभी वस्तुओं में मानव के व्याप्त होकर जान ले उतना स्पष्ट रूप से जान देता है। ये ज्ञान की एक विशदता है, स्पष्टतया विशद रूप से पूरा पूरा जान लेना, इसलिए वे असहाय है, ऐसा केवल ज्ञान को किसी की सहाय या मदद की जरूरत नहीं। ऐसा वह कार्य स्वभाव ज्ञान है, वह कार्य स्वभाव ज्ञान है, स्वभाव का ये कार्य है, आत्म स्वभाव का कार्य इसलिए कहा कि कारण ज्ञान भी वैसा ही है, यानी कारण स्वभाव जैसा केवल ज्ञान है वैसा ही कारण स्वभाव है। कारण और कार्य सदृश है और इसके का स्वभाव के अवलंबन से ये कार्य हुआ है, इसलिए उनको कारण कार्य का उपचार आपस में लगाया गया। वास्तव में दोनों के अपने अपने क्षणों कार्य निश्चय से भिन्न है, केवल ज्ञान के क्षणों कारक भिन्न है और कारण परमात्मा के भी क्षणों कारकों भिन्न है। कारण परमात्मा के क्षणों कारक जो है वो तो गुण रूप है, शक्ति रूप है, और केवल ज्ञान के जो क्षय कारक है वो तो धर्म रूप है, व्यक्त रूप है, पर्याय रूप है। ऐसे दोनों में अपनी अपनी स्वतंत्रता है, कहने से कि निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज स्वरूप और सहज परमचित शक्ति रूप निज कारण समय सार के स्वरूपों को युगपत जानने में समर्थ होने से वैसा ही है। ये केवल ज्ञान का स्वरूप लिया, केवल ज्ञान सबको जानता है, वो बात करके आगे जो मुख्य बात करनी है वो कही कि मुख्यतया काहे से ऐसा है, वो कार्य समय सार कार्य स्वभाव ज्ञान और कारण स्वभाव ज्ञान कि निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन, अपने स्वरूप में सहज मैंने अकृत्रिम रूप से किसी से किया हुआ नहीं, स्वाभाविक रूप से सहज मैंने स्वाभाविक रूप से अनंत दर्शन पढ़ा है, सहज चारित्र मैंने सहज सुख सहज शुद्ध वितराग बना पड़ा है। वितराग का स्वरूप है अपना, वितरागता है ये अपना स्वरूप है। सहज चारित्र कहा जो प्रकट हुआ वो नहीं, ये पर्याय है, ये सामर्थ्य है, स्वभाव है। सहज मैंने स्वभाव है, शुद्ध चारित्र वितराग चारित्र जो बारहवें गुण स्थान में प्रथम उत्पन्न होता है, ऐसा स्वभाव कारण पड़ा है उसमें से वो उत्पन्न होता है। जो है उसमें से आता है, नहीं उसमें से आने का सवाल पैदा नहीं। और सहज सुख स्वाभाविक सुख भरा है, आत्मा में स्वाभाविक सुख भरा है, ये प्रतीति आनी चाहिए, विश्वास आना चाहिए। बैंक में पैसा पड़ा है इसका विश्वास आता है कि ये मेरा है, क्या जेब में तो नहीं रखते सब, लाखों करोड़ों होते तो जेब में रहता है क्या पैसा, पड़े हैं कोई माल में पड़े हैं, उगाही में पड़े हैं, बैंक में पड़े हैं, मकान जमीन जायदाद में संपत्ति रहती है, लेकिन क्या है इसकी प्रतीति है मेरे पास है, क्या है ऐसी क्या रहती है? जीव को तो मेरे हैं मेरे पास है इतनी प्रतीति रहती है, और ये सुख का कारण है ऐसी भी प्रतीति रहती है। यह एक दूसरी बात कही कि आत्मा में अनंत सहज सुख भरा है, अभी वर्तमान में तीनों काल है लेकिन प्रतीति तो वर्तमान में आएगी, तो उसकी प्रतीति आने से परिणाम का झुकना वहां होता है। जहां भी सुख की प्रतीति हो वहां आत्मा के सारे परिणाम लगे रहते हैं, इसलिए आचार्य महाराज ने ये कहा कि सुख तो है तो आत्मा में है, आत्मा का सुख आत्मा में है, आत्मा का सुख आत्मा को छोड़कर और कहीं जगह नहीं। सुंदर जी कहते हैं कि ये जीव तुम भ्रमणा में मत पड़, क्या कहा, तुम भ्रमणा में मत पड़, तेरा सुख तेरे में है और कहीं जगह नहीं। और जगह सुख नहीं होने पर भी वहां से सुख की आशा रखना, आशा धरना या सुख के लिए प्रयास करना, उसी का नाम उपाधि है, क्या है, इसी का नाम उपाधि है। तो इस उपाधि कैसे छुटेगी, उपाधि है वो दुखमय परिणाम है, जितनी भी उपाधि है ये सभी परिणाम दुखमय परिणाम है। तो दुख छुड़ाने के लिए कहते हैं कि सहज सुख आत्मा में अनंत काल से स्वाभाविक रूप से अनंत अनंत सुख का भंडार भरा है, प्रदेश प्रदेश में कोई प्रदेश खाली नहीं अनंत सुख से, अभी मौजूद है इसकी प्रतीति है क्या, तो सवाल उठना है, इसकी विश्वास है क्या, सभी बात दिखने से स्वीकृत होती है क्या है? जब ऐसी बात है कि नहीं दिखता है इसलिए हम स्वीकार नहीं करते, तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या सभी बात दिखने से ही आप स्वीकार करते हैं या बिना देखे भी स्वीकार करते हैं? लगता नहीं है फिर भी आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, संसार में ये बिजली का कर्म चलता है, किसमें ये तार है, तार में बिजली का प्रवाह करंट चलता है कि नहीं चलता है, आपको दिखता है क्या? लगता है कुछ, दिखता है कुछ? उस पावर को देखा कभी आपने? हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, हमारे सिंधी थे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ा है अच्छी तरह, तो बिरला की फैक्ट्री में थी अच्छी पोस्ट, तो बोला कि पावर हमने कभी देखा नहीं, उसका वोल्टेज है वो मीटर में दिखने में आता है, कितना पावर है वो भी कांटा दिखाता है, लेकिन पावर नहीं दिखता क्या? नहीं दिखता है इसलिए कोई हाथ लगाता है क्या? क्यों क्यों हाथ नहीं लगाते? क्या आपको प्रतीति है कि वहां पावर है? हाथ नहीं लगाएंगे, दूर रहेंगे। तो ये आत्मा में सहज सुख का पावर है। क्या है सुख? व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, दिखने में नहीं आएगा, लेकिन पावर है, उसको सहज कहते हैं। सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज सुख, ये सब पावर की बात है। सहज मैंने पावर की बात है, तो पावर कभी दिखता लेकिन इसकी प्रतीति हुए तो काम बनता है, प्रतीति नहीं हुए तो काम नहीं बनता। अनादि से प्रतीति नहीं है, ये प्रतीति कराने हेतु दिखा रहे हैं और हमें दिखाने वाले के प्रति तो विश्वास होना चाहिए कम से कम, कि नहीं होना चाहिए? ये हम निकलते हैं ना, इश्यू निकलते हैं आजकल तो पेपरों में, इश्यू पे एडवर्टाइज आती है, शेयर के इश्यू निकलते हैं, और हम क्यों पैसा लगाते हैं? हम प्रीमियम भेज देते कि नहीं, शेयर के पैसे भेज देते कि नहीं, जान पहचान कुछ नहीं है फिर भी, कोई सगे संबंधी होते हैं वहां? आजकल तो सगे संबंधी तो लोग देते नहीं, वैसे तो सगे होने से कोई दे नहीं देते, दे देते क्या? फिर भी अनजाने को भी देते हैं, क्या कारण है? विश्वास है। बात तो विश्वास की रही ना, कि कहने वाले के प्रति जो विश्वास रखता है तो आगे बढ़ता है उस काम में, पर विश्वास किसके प्रति रखना? कि जो प्रमाणिक है उसके प्रति रखना, सिद्धांत तो वही है कि कहने वाले निर्दोष प्रमाणिक है कि नहीं, निर्दोष निरणु कथन मानो के हृदय ने जो 15 साल की उम्र में ये कर लिखा है, श्रीमद रायचंद जी 15 साल की उम्र में ये बात है, किसकी मानना? जगत में तो हरेक अपनी अपनी बात करते हैं, हमारी मानो हमारी मानो, लेकिन हमें किसकी मानना? कि जो प्रमाणिक है उसकी मानो, जो निर्दोष है इसकी मानो, जो विकराग है जो पवित्र है उसकी मानो। बात कही नहीं ऐसा भी बात की कि अकारण करुणा से ये बात कही गई, शास्त्र क्यों लिखा? हमारे गुरुओं ने, श्री गुरु ने शास्त्र क्यों लिखा? क्योंकि उसको कुछ लेना देना होता तो दिगंबर होते भी, इनके दीदार ही वो सिद्ध करते हैं कि उसको कुछ लेना तो यही नहीं, जो था वो भी छोड़ दिया, वो तो छोड़कर बैठे, इसलिए कुछ लेने के लिए कह रहे हैं या ग्रंथ बना रहे हैं वो सब बात तो है ही नहीं। फिर भी जो ग्रंथ बनाते हैं वो तो निष्कारण करुणा से बनाते हैं कि जगत के प्राणी हैं, दुखी है और दुखी इसलिए है कि सुख कहाँ है उसका उसको ज्ञान नहीं। तो जगत के प्राणी के दुख मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए उनको उतनी करुणा सहज रूप से उत्पन्न होती है तो शास्त्र बन जाता है। क्या शास्त्र है? वो बन जाता है कि हम सुखी हो रहे हैं बिना कोई साधन संपन्न हुए बिना भी हमको सुखी है। एदंत सुखी सुनी मुनि वितरागी, हम सुखी है, हम किंचित मात्र दुखी नहीं है। जिसको सुख की प्राप्ति करनी हो उसके लिए ये बात हमारे ज्ञान में आई है, हमारे अनुभव में आई है, वो अनुभव सिद्ध बात हम कर रहे हैं। कल्पना से कोई बात नहीं करेंगे, अनुभव से करेंगे, कल्पना से नहीं करेंगे। तो ये कहा कि सहज सुख भरा है आत्मा में, स्वाभाविक तौर से अनंत सुख की शक्ति भरी है, सामर्थ्य भरा है। किस तरह से उसका अनुभव करे, उसका उपयोग करे, उसका प्रयोग करे, उतनी बात समझनी है। तो उसकी प्रतीति करे, विश्वास करे। प्रश्न किया हीरालाल जी ने, दिखता नहीं है, लगता नहीं है, इसलिए विश्वास आता नहीं है। कहने कुछ अभिप्राय होते हैं कि जब हम देखते नहीं है, हमको लगता नहीं है, तो हमको विश्वास नहीं आता। भले ही कहने वाले आचार्य महाराज कितने भी प्रमाणिक हो या तीर्थंकर देव हो, लेकिन हम बहुत पक्के लोग हैं। क्या हम हैं बनिए
कुत्ते घरे
जाति के बनिए हैं, बिना देखे बिना लगे हमको स्वीकार होने वाला नहीं है तो क्या करें? और ये हमारी परिस्थिति खुली है, हम छिपा करके तो नहीं कहते, इसलिए तो प्रश्न करें। तो कोई ऐसी भी बात बताइए कि जिससे वो दिखने लगे और लगने भी लगे, तो ये हमारी समस्या खत्म
हो जाएगी।
वरना हम इतने कच्चे नहीं हैं कि कहने से मान ले, स्वीकार कर ले या विश्वास कर ले या प्रतीति कर ले, इतने कच्चे तो हम
नहीं।
बनिए लोग इतने कच्चे होते भी नहीं। ऐसे ग्राहक भी आते हैं दुकान पे, तो समझ लेते हैं कि ये उधारी वाला है या रोकड़े वाला है, तो इसका भाव बदल देते कि नहीं बदल देते हैं। दिखने से भाव बदलते हैं, नोट दिखने से जब हाँ भाव बदलते हैं, तो यहां भी कुछ हमको दिखना चाहिए। इसका अभिप्राय तो प्रश्न में वो पड़ा है कि हमें कुछ दिखे तो विश्वास करे, नहीं दिखे तो विश्वास होगा नहीं। अब चाहे उसको अवगुण कहो, चाहे आप इसको गुण कहो, लेकिन हमारी यही हालत है कि हम बिना देखे मानने वाले
नहीं है।
तो ये भी है, दिखाने का भी कोई प्रकार है। लक्षण से लक्ष्य दिखाना जाता है या दिखाना, तो ज्ञान निरुपाधिक स्वरूप है, ये इसका लक्षण है। विलास में जो दृष्टि लिखा है उन्होंने प्रकरण लिखा है, कि एक गुण को अनंत गुण का रूप है। क्या है?
एक गुण को अनंत गुण का रूप है।
एक गुण को अनंत गुण का रूप है। तो सुख भी एक गुण है और ज्ञान भी एक
गुण है।
तो ज्ञान को सुख का रूप है। ज्ञान दिखता है कि नहीं दिखता है? ज्ञान दिखता है कि नहीं दिखता है?
दिखता है।
तो ज्ञान को प्रण दिखता है। तो ज्ञान को सुख का रूप है। आपने कभी किसी दृष्टि से ज्ञान को देखा है क्या? ज्ञान का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, श्रेय रूप अपना रूप क्या है? श्रेय रूप मैंने, अपना रूप क्या है? ज्ञान को इस दृष्टिकोण से ज्ञान को देखा करो। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्ञान सुख रूप दिखता है। ज्ञान सुख रूप दिखता है और इसकी प्रतीति भी दिखने से आ जाती है। लानी पड़ती आई जाती है। तो ये भी तरीका है, लेकिन उसको विषय आप समय का था। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का ये विषय रहा समय साल का। ये तो नियम शास्त्र का नियम शास्त्र में तो जिसने देखा है ऐसे ज्ञानी महासंत पुरुष है तो अपना आत्मरस बढ़ाने के लिए उसकी भावना भाते है। आत्म भावना भाते जीव लहे केवल ज्ञान है। आत्म भावना ऐसी एक भावना है कि जिससे केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये रस का विषय है। भावना क्यों भाते हैं कि रस को अधिक मात्रा में रसान्वित करना है। आत्मरस को आत्मविभोर होकर के आत्मरस में जिसको डूबना है तो आत्मभावना को खाते हैं। मैं यही विषय रहा नहीं था। आचार्य नारायण ने अपने आत्मा की भावना में ये ग्रंथ लिखा, उसने अपना आत्मरस को वृद्धिगत किया। घटना मृत में आती है कि एक ही गुण स्थान में मृगराज के सातवें गुण स्थान में रहते हैं तो वहां के वहां रहते हैं ऐसे नहीं मानना। वहां भी जगन मध्यम उत्कृष्ट ऐसा गुण स्थान का भी एका भेद है, प्रभेद जिसको कहते हैं। तो आगे बढ़ते ही जाते हैं क्योंकि अपना आत्मर जैसे जैसे परिणमन होता है तो ये शुद्ध परिणमन क्या निष्फल होता है? क्या एक समय के पर्याय कभी निष्फल नहीं होती? चाहे स्वभाव की हो चाहे विभाव की हो तो सफल ही होती है। तो अपने एक ही गुण स्थान में आत्मरस बढ़ाते बढ़ाते तो मोक्ष मार्ग में एक ही गुण स्थान में भी आगे बढ़ते ही रहते हैं। और उसी को एक शब्द में कहें तो ये आत्मभावना, यही आत्मभावना का कार्य है। तो सब बात करके ये बात कही कि निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन, ये आत्मभावना बनाने की बात करती है। हमारे परमात्म स्वरूप में सहज दर्शन है, सहज चारित्र पड़ा है, सहज सुख भरा है और सहज परमचित शक्ति रूप कैसे उत्कृष्ट चैतन्य शक्ति जिसमें ज्ञान और दर्शन दोनों आ जाते हैं। जैसे सहज चित शक्ति रूप नीज कारण समय सार के स्वरूपों को युगपल जानने में समर्थ होने से वह सारी है। ये केवल ज्ञान का मुख्य विषय है। चर्चा किसकी चल रही है? केवल ज्ञान की। जीवज्ञान का मुख्य विषय क्या है कि निज परमात्मा में जो विद्यमान में मौजूद विद्यमान का क्या है
मौजूद
है हमारी संपत्ति हमारे में भौगोलिक संपत्ति आत्मा में नहीं रहती वैसा ही है मैंने व्यवधान रही है उसमें क्रम पड़े ऐसा भी बाधा उसमें नहीं आती। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप कहा केवल ज्ञान का स्वरूप कहा। अब यह निम्न अनुसार शुद्ध अशुद्ध ज्ञान का स्वरूप और भेद कहे जाते हैं, जैसे निम्न कहेंगे नीचे में कहेंगे, ऐसे जो शुद्ध अशुद्ध ज्ञान का केवल ज्ञान को पूर्ण शुद्ध कहा तो जो अपूर्ण है वो पूर्ण शुद्ध नहीं है, इसलिए उसको शुद्धाशुद्ध कहने में आया। इसका स्वरूप और उसका भेद कहे जाते हैं। उपलब्धि भावना और उपयोग से तथा अवग्रह आदि भेद से अथवा बहुविध आदि भेद से मति ज्ञान अनेक भेद वाला है। ये मति ज्ञान के भेद कहे। देखिए जिनागम के अलावा ये ज्ञान के भेदों की बात भी कहीं नहीं है। अभेद ज्ञान की बात अभेद अभेद करके कह देंगे सांख्य आदि दर्शन, लेकिन भेद प्रभेद की बात उसके यहाँ नहीं है। 100 रुपया लेकिन कितना कि 100 की पूरी गिनती आवे उतना, वरना 100 का भाव भाषण नहीं होगा। ऐसे भेद प्रभेद बताने में यही हेतु है कि सामर्थ्य कितना है। जब अल्प ज्ञान में अधूरे ज्ञान में उतना सामर्थ्य है तो पूर्ण ज्ञान में कितना, केवल ज्ञान में पूर्ण ज्ञान में इतना, तो ऐसे अनंत पूर्ण केवल ज्ञान के पर्याय जिसमें से निकले ऐसा अनंत का संग्रहालय हो वो कितना, ये सामर्थ्य दिखाने के हेतु 11 गाथा से विषय चला है 15 गाथा तक। 15 गाथा में आखिर की टोच की बात जो है वो कह दी है टीकाकार मुनिराज ने पद्म प्रबंधारी देव ने कारण शुद्ध पर्याय की, ये बात कही 15 गाथा में। एक ऐसी बात कही कि अगर कोई अधिकारी जीव हो पात्र जीव हो तो ये बात ही ऐसी है कि उस बात को समझने के लिए वो बुद्धि में तर्क में आगे नहीं जाएगा, उस बात के वाच्य में जाकर के कार्य शुद्ध को पैदा कर लेगा। ऐसी एक बात है जो 15 गाथा में कही है, और ऐसी होने से आचार्य महाराज ने उसको एक विशेषण दिया कि कारण शुद्ध पर्याय क्या चीज है, कि ये पूजित पंचम भाव परिणति है। क्या कहा, पूजित क्यों कहा, देखिए उसको पूजित कहा क्यों, तो वो ऐसी है इसलिए कहा, वो पूजित है इसलिए उसको पूजित कहा। ये पूज्य करने लाए पूजने योग्य है। मैंने ये कार्य शुद्ध कार्य होने की चरम सीमा का कोई विषय है तो ये कारण शुद्ध पर्याय है। चाहिए पात्रता, चाहिए योग्यता, चाहिए इसका अधिकारी बना। अगर ये नहीं है तो बात बात रह जाएगी। बात का काम नहीं है, काम है भाव का, काम है बात का, काम नहीं है परिणमन का काम है ये। इसलिए उसको पूजित कही, ऐसी चीज है ये विषय, कहीं मिलता नहीं। दूसरे आगमों में भी ये विषय उतना खुल करके नहीं मिलता। तो आचार्य महाराज ने, टीकाकार महाराज ने, मुनि महाराज ने जो लिखा वो तो थोड़ा संक्षेप में लिखा है, क्योंकि इनके तो विकल्प ही मर्यादित है। लेकिन गुरुदेव ने इस बात को बहुत खुली, आज भी इस बात को समझने के लिए भी, समझने के लिए भी कोई क्षोभ सुनकर दूसरी योग्यता चाहिए, परिणमन करने के लिए तो कोई दूसरी ही योग्यता चाहिए। लेकिन बात तो कोई ऐसी है जो खोल करके गुरुदेव ने अपने अंतर में से खोली है, निकाली है। प्रवचन तो छपे हैं, नियम सार के प्रवचन पूर्व में भी छपे हैं
जी,
और अभी अभी भी इसका प्रकाशन
हो गया है,
हो गया है, पहले भाग का हो गया है। उसमें कितनी गाथा ली पहले भाग में? वो 15 गाथा तो आगे होगी,
37 तक आई,
37 तक आई पहले अधिकार, पहला अधिकार पूरा हुआ 38 से, तो दो अधिकार पूरा हो गए, तीसरा अधिकार 38 से शुरू होता है जो गाथा चला रहे हैं।
हिन्दी
गुजराती में भी तो हुआ है और नहीं उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, वो ग्रंथ नहीं आया है।
10 पुस्तक
नहीं, गुजराती पढ़ सके वो ले लें,
आप
देखें। गुजराती से गुरुदेव के प्रवचन हिंदी कोई करने वाले हो तो हमें बहुत से गुरुदेव के प्रवचन हिंदी में अनुवाद करवाने हैं। उनको एक हिंदी भाषी प्रोफेसर वहां मिल गए हैं, काम तो हमने चालू करवाया है। ये आत्मसिद्धि शास्त्र पर जो गुरुदेव के प्रवचन हुए हैं उनका काम हमने चालू करवाया है। तो पारिश्रामिक लेकर के एक ग्रंथ 5000 रुपया में अनुवाद कर देंगे। लेकिन और कोई भी हो तो गुरुदेव के सैकड़ों प्रवचन हिंदी में अनुवाद करवाने लायक है। हिंदी भाषी जनता के लिए एक बहुत बड़ा उपकार का एक कारण बन जाएगा। हम लोग तो खर्च करने के लिए तैयार हैं, कोई भी कितना भी पैसा ले लेकिन काम करे तो तलाश करके भी आप हमें लिख देना। करते हैं आप, बहुत सुंदर बात है। आप बाद में हमें मिल लेना तो हम काम चालू करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्य कार्यकर लोग हैं इन लोगों को भी हमारी प्रार्थना है कि वो ऐसे कोई आदमी हो तो ढूंढते रहें, इसकी तलाश करते रहें, अच्छी तरह से तलाश करें, और ऐसे कोई काम हो तो 2-3 ग्रंथ का काम बता देंगे और जल्दी से जल्दी इसका लाभ हिंदी भाषी लोगों को भी मिल सके। बहुत अलौकिक विषय गुरुदेव ने अपने प्रवचन में खोला है, बहुत से आगम पर प्रवचन हो चुके हैं, गुजरात में इसके ग्रंथ निकल रहे हैं लेकिन हिंदी में इतने नहीं निकल रहे हैं। और अपने तो हिंदी भाषी की संख्या गुजराती से बहुत है, अपनी संख्या हिंदी भाषियों की ज्यादा है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी गुजराती में प्रवचन हुए हैं मूल में, इसलिए ये एक तकलीफ रही है। तो इसको दूर करने के लिए अनुवादक चाहिए हमें। पैसे देने वालों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, ये बात आपके ध्यान में रहे। हमने थोड़ा बहुत चालू करवाए हैं लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होगा, दो तीन आदमी काम करेंगे अलग अलग ग्रंथ के तो बहुत जल्दी से ये काम हो सकता है। तो ये थोड़ी अपनी स्वार्थ की ये बात कही, इसमें स्वार्थ तो अपना है,
अपना लाभ होने वाला है
कि अपने को लाभ मिले और अपने से ये तो स्वपर उपकार प्रवृत्ति होती है। ये स्वाध्याय है, ये प्रचार है, प्रसार है, ये सब स्वपर उपकार है। अपना भी भावना का ये बात, अपनी भी भावना की ये बात रही और निमित्त नैमित्तिक रूप से जो भी कौन कहाँ पात्र है जानते नहीं हम, छदमस्त होने से कौन कहाँ कब पात्र है कब होंगे जानते नहीं, लेकिन उपलब्ध है तो किसी न किसी को इसका लाभ आज नहीं तो कल मिल सकता है। इसलिए ये जो कोई काम करने वाला मिल जाए तो अच्छी बात है। विषय तो भेद प्रभेद का बहुत है, यहाँ थोड़ा संक्षेप में लेकर मूल विषय पर आना है, लेकिन आज का समय तो खत्म हो चुका है, कल से तो और बात नहीं
है,
पौने दस तक लेना है।
दोपहर में एक घंटा,
दोपहर में घोषणा एक घंटा के बाद। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मत ज्ञान का फिर यहाँ कहते हैं कि उपलब्धि, उपलब्धि भावना और उपयोग, ये मति ज्ञानावरण क्षोक्ष्म जिसमें निमित है, ऐसी अर्थ ग्रहण शक्ति, पदार्थ को जानने की शक्ति सो उपलब्धि है। जाने हुए पदार्थ के प्रति पुनः पुनः चिंतन करना उसको भावना कहलाने में आती है, जो बार बार होती है। और यह काला है, यह पीला है, यह सफेद है इत्यादि रूप अर्थ ग्रहण व्यापार, मैंने पदार्थ को जानने का व्यापार उसको उपयोग कहने में आता है। ये मत ज्ञान का भेद कहा। तो ऐसे ज्ञान मति ज्ञान का तीन प्रकार कहा, उपलब्धि भावना और उपयोग। उपलब्धि को हम कभी कभी परिणति भी कहते हैं, लब्ध परिणति भी कहते हैं। क्यों? कि जो ज्ञान में जम जाती है, जिसकी स्मृति नहीं करनी पड़े, ऐसी एक परिणति बनती है, इसको लब्धि मैंने प्राप्ति मैंने उपलब्धि भी कहने में आती है। जैसे कि भावना पूर्वक बार बार उपयोग चले तो उसकी उपलब्धि मैंने लब्धि हो जाती है। ऐसी एक साइकिल चलती है, भावना से उपयोग और उपयोग से लब्धि, उपलब्धि कहते हैं। भावना उपयोग और लब्धि, भावना उपयोग और लब्धि। इसलिए भावना का बहुत बड़ा महत्व है कि जिसका एक भावना रहती है इसका उपयोग बार बार होता है। जैसे हमें कुछ चीज चाहिए, हमें कुछ चीज चाहिए तो उसका बार बार उपयोग हो जाएगा और बार बार उपयोग होने से इसकी परिणति बन जाएगी। परिणति बन जाएगी इसका मतलब क्या है कि हमें स्मरण नहीं करना पड़े। जैसे एक बच्चा का नाम हम रखते हैं तो बार बार उस नाम से उसको पुकारते हैं, फिर उसको आगे जाकर के अपना नाम का स्मरण नहीं करना पड़ता, मैं फलाना हूं इस नाम का स्मरण नहीं करना पड़ता, क्योंकि बार बार उसका उपयोग हुआ और भावना पूर्वक उपयोग हुआ इसकी लब्धि हो जाती है। तो ये परिणति बनाने के लिए मति ज्ञान में इस तीन प्रकार के भेद पड़ते हैं। और दूसरा मति ज्ञान का और भी चार भेद है, वो अवग्रह, अवाय, धारणा या अवग्रह या अवाय और धारणा, ऐसे चार भेद हैं। तो अवग्रह या है वो पदार्थ को ग्रहण करने का प्राथमिक स्टेज है, अवाय से थोड़ा पता चलता है कि इस पदार्थ को मैंने जाना, اس کے پہلے تو چھدمست کو یہ پکڑنے میں نہیں آتا. ہمارے میں نرنے ہوتا ہے تم مجھے کوئی بلا رہے ہیں, کسی نے آواز دیا میرے نام کو پکارا ایسے, اس کے پہلے اوگنا اور یہا ایسا ایک سیل متی گیان میں بن جاتا ہے. بعد میں ہوائی میں نرنے ہوتا ہے, پھر دھارنا میں آتا ہے کہ فلانا کوئی مجھے بلا رہے ہیں یا دوسرے کو بلا رہے ہیں, اسے بھی کوئی بھید پڑ جاتا ہے. تو موکش شاستر میں اس کا وشیش وستار لیا ہے, نہ یہ پرکرن نہیں ہے اس لیے مول میں نہیں لیا, یہ فٹ نوٹ میں لیا ہے. اس لیے جس کو اس کا زیادہ روپ سمجھنا ہو وہ تتواس سوتر سے سمجھ لیں. اور متی گنان کا اور بھی بارہ بھید ہے, بہو ایک بہویر ایک ویر کشپر اکشپر انسرت نسرت انکت اکت دھرو اور ادھرو, ایسے اس کے بھی وشیش کے لیے موکش شاستر دیکھ لینا. اپنے کو اس کا کوئی وشیش ارتھ میں جانے کا خاص پریوجن نہیں. بھید پربندے کی بات جو ہے وہ اتنی پریوجن بھوت نہیں رہتی. اگرہیا اور بہو بہوی دادی بھید سے متی گیان کے انیک بھید ہیں. لفظی اور بھاونا کے بھید سے سوت گیان دو پرکار کا ہے. لفظی اور بھاونا کے بھید سے بار بار سوت گیان کا اپدیش ہونے سے سوت گیان کی بھی پرینتی بن جاتی ہے. تو لفظی متی گیان کی بھی ہوتی ہے بھاونا کے کارن سے اور سوت گیان کی بھی ہو جاتی ہے. اس کو لبد کہتے ہیں اپن, اس کو لبدی بھی کہتے ہیں اور سادی بھاشا میں لبد بھی کہتے ہیں. لبد میں نے پراپت, جیسے کہ ہم ابھی شاستر کے وشے کی گیان کی چرچا کر رہے ہیں, تو ہمارا سانسارک وشیوں کا جو گیان ہے وہ ابھاو روپ ہے یا سدبھاو روپ ہے؟ نہیں, سدبھاو روپ ہے لیکن لبدھ روپ میں ہے, بھاونا یا اپیوگ کے روپ میں نہیں. ابھاو روپ ہو تو وہ تو کھو گیا, ختم ہو گیا, ناش ہو گیا, تو وہ نہیں ہے. تو اس کو پراپت کہو, لبدھ کہو, ایکوائرڈ نالج جس کو کہتے ہیں, تو پراپت گیان ہے. جیسے ہم پڑھے گنیت, پڑھے اسکول میں پڑھے, تو ابھی کوئی گنیت کا وشے نہیں چلتا ہے, ابھی تو شاستر کا وشے چلتا ہے, لیکن ہمارا وہ گیان کا ناش نہیں ہوا ہے, وہ لبدھ ہے ہمارے پاس, وہ پراپت ہے, اس کا ابھاؤ نہیں ہوا, اس کا ناش ہوا. اس طرح سے ایسے لبدھ اور بھاونا کے بھید سے سوت گیان کے دو پرکار ہیں. دیش سرو اور پرم کے بھید سے ارتھات دیشاودھی سرواودھی اور پرماودھی ایسے تین بھیدوں کے کارن اودھی گیان کا بھی تین پرکار ہے. دیش اودھی میں نے امک انش میں اودھی کا کمی ہونا, شیتر اور کال کی مریادا اودھی میں نے مریادا, سرواودھی میں نے پورا, اور پرماودھی میں نے اتکرشٹ. ایسے اودھی گیان تین پرکار کا ہے, اور رجومتی اور وپورمتی کے بھید سے بھید کے کارن منہ پریو گیان کا دو پرکار ہے. یہ منہ پریو گیان بھی اس کا بھی سوروپ اور اودھی گیان کا وشیش روپ یہ بھی تتوار سوتر میں آچاریہ مہاراج نے لکھا ہے. اور پرم بھاو میں استھت سمیک درشٹی کو یہ چار سمیک گیان ہوتا ہے, متی سروت اودھی اور من پریب. یہ پرم بھاو میں استھت ہوئے ہیں. سمیک درشٹی کہاں استھت ہے؟ اپنے پرم سوبھاؤ میں استھت ہونے کے کارن ان کو یہ چار سو گیان سمیہ گیان ہوتے ہیں. متھیا درشن ہو وہاں متی گیان, سوت گیان اور اودھی گیان उसको कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान ऐसे नामांतरों के मैंने अन्य नामों से प्राप्त होते हैं। वहां भी तीन प्रकार के ज्ञान हैं, मति, श्रुत और अवधि, लेकिन वो मिथ्यात्व सहित होने से और उस ज्ञान के निमित्त से जीव अपना अहित करता है, इसलिए इस ज्ञान को कुमति आदि कहने में आया है। जैसे कोई काम धलका करता है तो क्या कहते हैं कि इसकी कुमति हो गई, ऐसा कहते कि नहीं? तो कुमति क्यों हुई? कि वो दूषित है, इसलिए दूषण वाला है और दोष से अपना को दुख की प्राप्ति होती है, दोष और दुख अविनाभावी होते हैं, तो इसलिए उसका नाम कुमति ऐसा कहा। कु शब्द दूषण को बताने के लिए ये कु शब्द अक्षर को रखा है। यहां ऊपर कहे हुए ज्ञानों में सहज ज्ञान, शुद्ध अंत तत्व स्वरूप परम तत्व के व्यापक होने से स्वरूप प्रत्यक्ष है, जो ये विषय यहां से चालू किया है। मुनिराज को जो बात करनी है वो ये करनी है, तो भेद प्रभेद में कोई खास बात नहीं है, वो तो किसी को समझ में आए किसी को नहीं समझ में आए तो इसका कोई इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो इस चीज की है कि ये क्या मूल में स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप आश्रयभूत होने से उसको प्रयोजन के विषय में गिनने में आता है। ये प्रयोजनभूत विषय है, हम कल इस विषय को विस्तार से लेंगे।